एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, स्टीवन पिंकर की द सेंस ऑफ स्टाइल। और ये शायद हम सबके काम की है, चाहे हम लेखक हों या ना हों।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम सब किसी न किसी तरह से तो लिखते ही हैं, ईमेल हैं, कोई रिपोर्ट बनानी है या बस अपनी बात किसी को समझानी है। पर कितनी बार ऐसा होता है कि हम जो कहना चाहते हैं ना,
हाँ,
वो ठीक से कह नहीं पाते, या फिर दूसरों की लिखी हुई बातें वो हमें पल्ले ही नहीं पड़ती।
सही कहा। और आजकल तो ये और भी ज्यादा है, जहां देखो जानकारी ही जानकारी, ऑफिस के मेमो देख लें या सरकारी नोटिस या फिर एकेडमिक पेपर्स।
उफ, वो तो पूछे मत।
हाँ, अक्सर इतने उलझे हुए होते हैं कि वही सिर दुखने लगता है। तो पिंकर की ये किताब इसी उलझन को सुलझाने का एक रास्ता बताती है, लेकिन जरा हटके अंदाज में, पारंपरिक तरीकों से अलग।
हाँ, ये कोई नियमों की लिस्ट नहीं है कि ये करो ये ना करो। पिंकर असल में भाषा और हमारा दिमाग, ये दोनों कैसे काम करते हैं, इसके बीच के रिश्ते को समझने में मदद करते हैं। तो चलिए इस चर्चा में गहरे उतरते हैं और देखते हैं कि ये जाने माने साइंटिस्ट हमें अच्छी असरदार राइटिंग के बारे में क्या सिखा सकते हैं।
बिल्कुल, पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात हो जाए। स्टीवन पिंकर ये कोई आम भाषा के पंडित नहीं है।
हाँ, ये बात तो है।
वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं और दुनिया के सबसे जाने माने कॉग्निटिव साइंटिस्ट्स, यानी संज्ञानात्मक वैज्ञानिकों में से एक हैं।
संज्ञानात्मक विज्ञान मतलब वो विज्ञान जो हमारे सोचने, समझने, सीखने के तरीकों को स्टडी करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिंकर भाषा को सिर्फ बाहर से नियमों के चश्मे से नहीं देखते।
नहीं, बिल्कुल नहीं, वो अंदर से देखते हैं कि हमारा दिमाग भाषा को कैसे प्रोसेस करता है, कैसे समझता है। यही चीज उनके नजरिए को एकदम यूनिक बनाती है।
अच्छा,
हाँ, उनका सारा काम भाषा और मन, यानी माइंड के कनेक्शन पर ही रहा है। खास तौर पर कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, इस पर उन्होंने काफी काम किया है। तो जब वो स्टाइल पर, लिखने के ढंग पर बात करते हैं ना,
तो उसके पीछे सालों का वैज्ञानिक शोध होता है।
एग्जैक्टली, दशकों का रिसर्च और सबूत। वो सिर्फ ये नहीं कहते कि ऐसा लिखो, बल्कि समझाते हैं कि कोई तरीका क्यों काम करता है।
क्यों?
क्योंकि वो हमारे दिमाग के डिजाइन से, उसके काम करने के तरीके से मेल खाता है।
मतलब अगर कोई पुराना नियम है लेकिन विज्ञान उसे सपोर्ट नहीं करता, तो पिंकर उसे चुनौती देने से हिचकते नहीं है।
बिल्कुल नहीं हिचकते, और यही चीज उनके अप्रोच को इतना ताजा और तर्कसंगत बनाती है ना।
हाँ बिल्कुल, एक लॉजिकल अप्रोच लगता है।
तो आते हैं किताब पर, द सेंस ऑफ स्टाइल। ये असर में 21st सेंचुरी के लिए नॉन फिक्शन, यानी गैर काल्पनिक गद्दे लिखने की एक गाइड है। पर फिर वही बात, ये सिर्फ व्याकरण की रूल बुक नहीं है। ये सिखाती है कि साफ, आकर्षक और असरदार ढंग से कैसे लिखा जाए। और इसके लिए वो भाषा विज्ञान और कॉग्निटिव साइंस, यानी संज्ञानात्मक विज्ञान के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करती है।
तो मतलब ये हुआ कि अच्छा लिखना सिर्फ सही शब्द चुनना भर नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। ये समझना है कि पढ़ने वाले का दिमाग जानकारी को कैसे लेगा, कैसे समझेगा।
पिंकर का जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है फिर?
उनका जो मुख्य तर्क है वो ये है कि अच्छा लेखन क्या है? विचारों का एक कुशल ट्रांसफर, एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक,
लेखक के दिमाग से पाठक के दिमाग तक। और इसके लिए लेखक को क्या करना होगा?
पाठक की जगह खुद को रखना होगा।
हाँ, पाठक की संज्ञानात्मक यात्रा, मतलब वो कैसे समझेगा, इसका अंदाजा लगाना होगा। और इसमें सबसे बड़ी रुकावट जो आती है, उसे पिंकर कहते हैं ज्ञान का अभिशाप, द कर्स ऑफ नॉलेज।
ज्ञान का अभिशाप सुनने में ही भारी लगता है, इसका मतलब क्या हुआ?
कि जो हम जानते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि दूसरा शायद वो नहीं जानता। बिल्कुल यही। सोचिए, कोई एक्सपर्ट है किसी फील्ड का, जब वो उस बारे में लिखता है तो वो अक्सर ये सोच ही नहीं पाता कि जो बातें उसके लिए बिल्कुल आम हैं, रोजमर्रा की हैं, वो किसी बाहरी व्यक्ति के लिए, किसी नौसिखिए के लिए कितनी नई या मुश्किल हो सकती हैं। और यहीं से शुरू होती है वो उलझी हुई भाषा, मुश्किल शब्द, यानी जागन,
और वो शॉर्ट फॉर्म्स, एक्रोनिम्स, जिनका मतलब समझाया ही नहीं जाता।
हाँ बिल्कुल, ये सब उसी ज्ञान के अभिशाप का नतीजा है।
तो पिंकर इसका हल क्या बताते हैं, इस अभिशाप से कैसे बचें?
वो एक खास तरह की लेखन शैली, एक स्टाइल की वकालत करते हैं। उसे वो कहते हैं क्लासिक स्टाइल।
क्लासिक स्टाइल,
क्लासिक स्टाइल, हाँ। ये एक ऐसा तरीका है जहां लेखक खुद को पाठक के बराबर मानता है और उसे सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है, जैसे जैसे कोई गाइड हो जो किसी खूबसूरत जगह का टूर करा रहा हो।
अच्छा, यानी लेखक खुद पीछे रहता है और फोकस चीज पर होता है, विषय पर। गद्य एक साफ खिड़की की तरह है जिससे दुनिया दिख रही है, ना कि आईना जिसमें लेखक बस खुद को ही देख रहा हो।
क्या बात कही, बिल्कुल यही। इस स्टाइल में ना लेखक अपनी विद्वत्ता का दिखावा नहीं करता। वो ऐसे वाक्य नहीं लिखता कि इस अध्याय में हम ये तर्क प्रस्तुत करेंगे।
हाँ हाँ, वो तो बहुत कॉमन है एकेडमिक राइटिंग में,
बहुत ज्यादा। क्लासिक स्टाइल में लेखक सीधे मुद्दे की बात करता है, एक भरोसेमंद साथी की तरह। और ये किताब सिर्फ प्रोफेशनल राइटर्स के लिए नहीं है, स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, जर्नलिस्ट, बिजनेस वाले लोग, ब्लॉगर, कोई भी जो अपनी बात साफ साफ रखना चाहता है वो इससे सीख सकता है।
चलिए, तो अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। पिंकर इन विचारों को कैसे सामने रखते हैं, किस तरह से किताब आगे बढ़ती है? शुरुआत शायद इसी बात से होती है कि लिखना हमारे लिए स्वाभाविक क्यों नहीं है।
हाँ बिल्कुल, पहले अध्याय में वो यही बताते हैं कि देखिए, बोलना हमारे लिए नेचुरल है, हम पैदा होते हैं और बोलना सीख जाते हैं। लेकिन लिखना, लिखना एक सीखी हुई कला है, एक टेक्नोलॉजी है, एक आविष्कार। इसीलिए अच्छा लिखना मुश्किल काम है। फिर वो आजकल के लेखन की आलोचना करते हैं, खासतौर पर एकेडमिक और सरकारी भाषा की, जिसे वो अक्सर बनावटी, दिखावटी और समझ से बाहर बताते हैं।
सच है।
और वो कहते हैं कि पारंपरिक स्टाइल गाइड इसलिए फेल हो जाती हैं क्योंकि वो भाषा को बस नियमों का एक सेट मानती हैं, दिमाग की प्रक्रिया की तरह नहीं देखती। यहीं से वो क्लासिक स्टाइल का प्रस्ताव रखते हैं, एक ऐसा नजरिया जिसमें पाठक सबसे पहले है।
और ये क्लासिक स्टाइल, जिसे वो दुनिया पर एक खिड़की भी कहते हैं,
हाँ,
इसमें और क्या खास बातें हैं? आपने कहा लेखक और पाठक बराबर हैं जैसे बात कर रहे हूँ।
हाँ, और गद्य जो है वो ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी। जोर इस पर नहीं कि मैं क्या सोच रहा हूँ या मैं कितना जानता हूँ, बल्कि जोर इस पर है कि सच्चाई क्या है, विषय क्या है।
अच्छा,
ये स्टाइल ना आत्मचेतना से बचती है। मतलब लेखक ये जताने की कोशिश नहीं करता कि देखो मैं लिख रहा हूँ, वो तो बस जानकारी सामने रखता है। पिंकर इसकी तुलना दूसरी स्टाइल से भी करते हैं, जैसे प्रैक्टिकल स्टाइल है जो निर्देश देती है, या प्लेन स्टाइल है जो कई बार बहुत सपाट हो सकती है, या फिर कॉन्टेम्पलेटिव स्टाइल है जो लेखक के अपने विचारों में ही खोई रहती है, या ओरेटोरिकल स्टाइल जो भाषण जैसी लगती है। पिंकर का मानना है कि मुश्किल विचारों को साफ साफ समझाने के लिए क्लासिक स्टाइल सबसे बेस्ट है।
फिर आता है वो ज्ञान का अभिशाप। आपने बताया कि ये बुरे लेखन का सबसे बड़ा कारण है, ये कैसे होता है? क्या इसके कुछ आम उदाहरण हैं जो हम रोज देखते हैं?
अरे बिल्कुल, रोज देखते हैं। सोचिए किसी डॉक्टर की पर्ची पे लिखी हैंडराइटिंग और दाशा, या किसी इंजीनियर की रिपोर्ट, इतने टेक्निकल शब्द कि कोई बाहर वाला समझ ही ना पाए।
हाँ, या कोई सरकारी फॉर्म, उसे भरना ही एक जंग होती है।
बिल्कुल, ये सब ज्ञान के अभिशाप के क्लासिक उदाहरण हैं। होता क्या है कि एक्सपर्ट अपनी फील्ड की भाषा, उसकी अंदरूनी बातों में इतने रच बस जाते हैं कि वो भूल ही जाते हैं कि भाई बाकी दुनिया उस कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझती।
तो इससे बचने का तरीका क्या सुझाते हैं पिंकर? क्या लेखक को जानबूझकर एकदम सरल लिखना चाहिए?
सरलता से ज्यादा वो जोर देते हैं सहानुभूति पर, एम्पथी पर। अपने लिखे हुए को किसी ऐसे इंसान से पढ़वाइए जो उस टॉपिक का एक्सपर्ट ना हो, देखिए उसे समझ आता है या नहीं।
अच्छा, एक बाहरी नजरिए से जांचना।
हाँ, या फिर खुद कल्पना कीजिए कि आप किसी ऐसे को समझा रहे हैं जिसे उस बारे में कुछ नहीं पता। अपने दिमाग से बाहर निकलकर पाठक के जूते में पैर डालकर सोचने की कोशिश। ये आसान नहीं है, मानती हूँ, लेकिन अच्छे लेखन के लिए ये बहुत जरूरी है।
इसके बाद पिंकर व्याकरण यानी ग्रामर पर आते हैं, लेकिन यहाँ भी उनका नजरिया कुछ अलग है। चैप्टर का नाम भी बड़ा दिलचस्प है, जाल, पेड़ और तार, द वेब, द ट्री एंड द स्ट्रिंग। ये क्या मतलब हुआ?
हाँ, ये बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। पिंकर कहते हैं कि हमारे दिमाग में जो विचार होते हैं ना, वो एक जटिल जाल की तरह होते हैं, एक वेब, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ, नॉन लीनियर।
समझ रहा हूँ।
लेकिन जब हम बोलते या लिखते हैं तो हमें इन विचारों को शब्दों की एक सीधी तार, एक स्ट्रिंग में पिरोना पड़ता है, एक के बाद एक शब्द। तो ये होता कैसे है, ये जटिल जाल सीधी तार में कैसे बदलता है?
यहीं पर व्याकरण या सिंटैक्स का रोल आता होगा, है ना?
बिल्कुल, सिंटैक्स वो सिस्टम है जो हमें इस वेब को स्ट्रिंग में बदलने की ताकत देता है। पिंकर वाक्य की बनावट को एक पेड़ की तरह देखते हैं, एक ट्री स्ट्रक्चर।
पेड़ कैसे?
जैसे पेड़ में तना होता है, फिर शाखाएं निकलती हैं, फिर और छोटी शाखाएं, फिर पत्ते। वैसे ही वाक्य में भी एक मुख्य संरचना होती है और उसके अंदर छोटे छोटे समूह होते हैं। जैसे मोहन ने सेब खाया, इसमें मोहन ने एक हिस्सा है सब्जेक्ट वाला और सेब खाया दूसरा हिस्सा है प्रेडिकेट वाला। फिर सेब खाया में भी सेब अलग है, खाया अलग है। ये एक हायरार्किकल ढांचा है, पेड़ जैसा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो व्याकरण के नियम हैं, ये बस यूं ही नहीं बना दिए गए, ये सिर्फ स्कूल टीचर की डांट से बचने के लिए नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये नियम असल में हमारे दिमाग को भाषा समझने में मदद करते हैं। वो कन्फ्यूजन को, अस्पष्टता को कम करते हैं और पढ़ने वाले के दिमाग पर जो बोझ पड़ता है ना समझने का, उसको मैनेज करते हैं।
अच्छा, जैसे कि शब्दों का क्रम क्यों जरूरी है या कॉमा कहाँ लगाना है, ये सब इसीलिए ताकि मतलब साफ रहे।
हाँ, ताकि पाठक आसानी से समझ सकें कि कौन सा शब्द किससे जुड़ा है और वाक्य का असल मतलब क्या निकल रहा है। तो व्याकरण एक तरह से विचारों को सटीक बनाने का जरिया है, एक पावरफुल टूल।
वाक्यों से आगे बढ़कर पिंकर पैराग्राफ और पूरे लेख में एक फ्लो, एक सुसंगतता, कोहेरेंस जिसे कहते हैं, उसकी बात भी करते हैं। विचारों को आपस में कैसे जोड़ा जाए ताकि पढ़ने वाला भटके नहीं।
हाँ, कोहेरेंस बहुत जरूरी है। इसके लिए वो दो मुख्य सिद्धांत बताते हैं। पहला है ज्ञात नवीन अनुबंध,
गिवन न्यू कॉन्ट्रैक्ट।
ज्ञात नवीन अनुबंध,
ये क्या है?
इसका मतलब है कि हर वाक्य की शुरुआत में कुछ ऐसी जानकारी होनी चाहिए जो पाठक पहले से जानता है, या तो उसे पहले से पता है या पिछले वाक्य से पता चली है। ये ज्ञात हिस्सा हुआ, और फिर वाक्य के अंत में आनी चाहिए नई जानकारी, नवीन हिस्सा।
अच्छा, जैसे एक पुल सा बन जाता है पिछले वाक्य से अगले वाक्य तक। कोई उदाहरण दे सकती हैं?
समझ गया।
अब देखिए, दूसरा वाक्य उनकी से शुरू हुआ, उनकी यानी पिंकर की। ये ज्ञात जानकारी है, पिछले वाक्य से मिली।
हाँ, समझ गया।
और फिर वाक्य के अंत में नई जानकारी आई, किताब का नाम और वो क्या करती है। इससे क्या होता है, वाक्य आपस में जुड़ते चले जाते हैं, एक स्मूथ फ्लो बनता है, एक कड़ी सी बन जाती है।
बढ़िया तरीका है ये तो। और दूसरा सिद्धांत क्या था?
दूसरा सिद्धांत है कि हर पैराग्राफ का एक क्लियर मेन टॉपिक होना चाहिए, एक मुख्य विषय, और ये विषय अक्सर पैराग्राफ की पहली या दूसरी लाइन में ही बता देना चाहिए, जिसे टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। फिर बाकी का पूरा पैराग्राफ उसी टॉपिक को एक्सप्लेन करता है, उसी के बारे में और बताता है। इससे पाठक को पता रहता है कि अच्छा, इस पैराग्राफ में इस बारे में बात होने वाली है। विचारों को ऑर्गेनाइज रखने का ये एक अच्छा तरीका है।
और फिर आखिर में पिंकर उन नियमों से भी निपटते हैं जिन पर हमेशा बहस चलती रहती है, क्या सही है क्या गलत है। यहाँ वो जॉम्बी नियमों की बात करते हैं। जॉम्बी रूल्स, ये क्या चीज है भाई?
हाँ, जॉम्बी नियम, ये वो नियम है जो पिंकर के अनुसार मर चुके हैं, मतलब उनका कोई लॉजिकल या भाषाई आधार नहीं बचा है, लेकिन फिर भी वो जिंदा है किताबों में, क्लासरूम में, और लोगों को डराते रहते हैं।
अच्छा,
जैसे
कौन से नियम?
जैसे ये नियम कि वाक्य के अंत में कभी प्रपोजिशन नहीं आना चाहिए, जैसे हु डिड यू गिव इट टू को गलत माना जाता है, या इन्फिनिटिव को स्प्लिट नहीं करना चाहिए, जैसे टू बोल्डली गो बोलना गलत है, टू गो बोल्डली बोलो।
अरे हाँ, ये तो सुना है। और ये भी कि वाक्य को एंड या बट से शुरू नहीं करना चाहिए।
बिल्कुल, ये सब जॉम्बी रूल्स के उदाहरण हैं पिंकर के हिसाब से। वो बताते हैं कि इनमें से कई नियम तो लैटिन ग्रामर को अंग्रेजी पर जबरदस्ती थोपने की कोशिश में बने थे, या फिर बस कुछ पुराने लेखकों की अपनी पसंद नापसंद थी।
ओ, तो भाषा असल में कैसे इस्तेमाल होती है उससे इनका लेना देना कम है।
हाँ, पिंकर जोर देते हैं कि हमें तीन चीजों में फर्क करना सीखना चाहिए। एक, असली व्याकरण के नियम जो वाक्य का मतलब साफ करते हैं। दो, औपचारिक यानी फॉर्मल राइटिंग की स्थापित परंपराएं जो स्टाइल से जुड़ी हैं। और तीन, ये नकली जॉम्बी नियम। और उनकी सलाह क्या है कि स्पष्टता और सहजता को प्राथमिकता दे, ना कि इन बिना सिर पैर के नियमों को।
तो इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य संदेश क्या निकल कर आते हैं? पहला तो शायद यही कि अच्छा लिखना सिर्फ ग्रामर के नियम रटना नहीं है, उससे कहीं ज्यादा ये पाठक के दिमाग को समझना है, उसके लिए सहानुभूति रखना है।
बिल्कुल, पहला पॉइंट यही है। दूसरा कि नॉन फिक्शन के लिए क्लासिक स्टाइल एक बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल मॉडल है। ये पारदर्शिता सिखाती है, बराबरी का एहसास कराती है और फोकस विषय पर रखती है। अगर हम भारत में देखें ना,
हाँ,
तो सरकारी या अकादमिक लेखन में अक्सर इसकी बहुत कमी दिखती है। भाषा कई बार जानबूझकर इतनी जटिल या आडंबर से भरी बना दी जाती है कि असल मुद्दा ही कहीं छिप जाता है। क्लासिक स्टाइल इसका तोड़ हो सकती है।
तीसरा, और ये बात तो बार बार आई, वो है ज्ञान का अभिशाप। ये वाकई बुरे लेखन का एक मुख्य विलेन लगता है। इसे पहचानना और इससे बचना ये लेखक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये सिर्फ लिखते हुए नहीं,
हाँ,
किसी को कुछ सिखाते या समझाते हुए भी याद रखना चाहिए।
बिल्कुल।
चौथा संदेश व्याकरण के बारे में, उसे डर की चीज या बोझ समझने की बजाय एक टूल की तरह देखें, विचारों को सटीक और साफ बनाने का टूल। ये भाषा की इंजीनियरिंग है एक तरह से, जो हमें मुश्किल आइडियाज को भी बताने की शक्ति देती है।
और पांचवा, कि हमें भाषा की नियमों को लेकर थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल होना चाहिए। सबूतों पर आधारित नजरिया रखना चाहिए। भाषा कैसे इस्तेमाल हो रही है, इस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, ना कि सिर्फ सदियों पुराने या बिना आधार वाले नियमों से चिपके रहना। भाषा तो बदलती है, है ना? बिल्कुल बदलती है, विकसित होती है। और आखिरी छठा संदेश, जो शायद सबसे जरूरी है, स्पष्टता, क्लैरिटी। साफ साफ लिखना और बोलना सिर्फ एक स्किल नहीं है, पिंकर इसे एक नैतिक जिम्मेदारी मानते हैं।
नैतिक जिम्मेदारी कैसे?
क्योंकि अस्पष्ट भाषा पढ़ने वाले का समय बर्बाद करती है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करती है और ज्ञान को फैलने से रोकती है। और ये बात सिर्फ किताबों पर नहीं, हमारे रोज के ईमेल, मैसेज, बातचीत सब पर लागू होती है।
ये बात तो सोचने वाली है। इस किताब में यकीनन कई ऐसी पंक्तियां होंगी जो इन आइडियाज को बढ़िया ढंग से पकड़ती हैं। कुछ यादगार विचारों या उद्धरणों पर बात करें।
हाँ, क्यों नहीं। एक तो मुझे वो क्लासिक स्टाइल वाला बहुत पसंद है। पिंकर लिखते हैं, क्लासिक स्टाइल लेखक द्वारा सत्य की प्रस्तुति है। लेखक एक गाइड है जो पाठक को वस्तुओं की दुनिया का दौरा करा रहा है, जिसे लेखक और पाठक एक साथ देख रहे हैं।
वाह, इसमें वो साझेदारी वाली भावना है। लेखक और पाठक साथ हैं और दोनों का ध्यान विषय पर है। लेखक हीरो नहीं, गाइड है।
ज्ञान का अभिशाप है ये। कल्पना करने में कठिनाई कि किसी और के लिए वो जानना कैसा होता है जो आप नहीं जानते। एकदम पिन पॉइंट किया है।
हाँ, समस्या अक्सर जानकारी की कमी नहीं, सहानुभूति की कमी होती है।
और व्याकरण की ताकत पर ये कहना भी देखिए कितना अच्छा है। सिंटैक्स संयोजी डिजाइन का एक चमत्कार है, एक प्रणाली जो सीमित संख्या में शब्दों को अनंत संख्या में वाक्यों में व्यवस्थित कर सकती है। प्रत्येक का एक अलग और सटीक अर्थ होता है। ये ग्रामर को नियमों के बोरिंग जंजाल से निकालकर एक क्रिएटिव पाओ की तरह दिखाता है।
अच्छा, अब इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या इस्तेमाल हो सकता है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? एकेडमिक दुनिया में तो शायद रिसर्च को आम लोगों तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है।
बिल्कुल, रिसर्च पेपर्स हों या ग्रांट के लिए प्रपोजल लिखने हों, उन्हें ज्यादा साफ, ज्यादा असरदार बनाने में ये सिद्धांत बहुत काम आ सकते हैं। इसी तरह बिजनेस की दुनिया में सोचिए।
ईमेल, रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशंस।
हाँ, कितने ईमेल रोज लिखे जाते हैं। अगर वो साफ हों, सीधे हों, तो कितनी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं, कितना वक्त बच सकता है, मीटिंग ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकती हैं।
भारत में हम अक्सर देखते हैं कि औपचारिक भाषा बहुत ज्यादा औपचारिक और जटिल हो जाती है। शायद पिंकर के सिद्धांत में सिखा सकते हैं कि कैसे सीधा, स्पष्ट और फिर भी सम्मानजनक तरीके से कम्युनिकेट किया जाए।
और स्टूडेंट्स के लिए तो ये सोना है, निबंध लिखते समय विचारों में वो फ्लो कैसे लाएं, ज्ञात नवीन अनुबंध का इस्तेमाल करके अपने तर्क कैसे मजबूत करें। ये सिर्फ अच्छे नंबर लाने के लिए नहीं है।
हाँ,
ये अपनी सोच को ही साफ तौर पर व्यक्त करने की क्षमता विकसित करने के लिए है। ये जिंदगी भर काम आने वाला हुनर है।
और वो ज्ञान का अभिशाप वाली बात, वो तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी लागू होती है ना? जैसे किसी दोस्त को कोई नई चीज समझा रहे हो या ऑफिस में किसी नए साथी को कुछ सिखा रहे हो।
बिल्कुल, हमेशा ये याद रखना कि जो मेरे लिए आसान है, जरूरी नहीं सामने वाले के लिए भी हो। ये हमें बेहतर टीचर, बेहतर मैनेजर, यहाँ तक के बेहतर दोस्त भी बना सकता है। दूसरों के नजरिए को समझना सिखाता है।
एक और फायदा भी है शायद, कि इस किताब को पढ़ने के बाद हम खुद बेहतर पाठक बन जाते हैं।
हाँ, ये भी होता है। आप नोटिस करने लगते हैं कि कोई लेखक कैसे लिख रहा है, क्या स्टाइल है। आप अच्छे लेखन को ज्यादा अप्रिशिएट करने लगते हैं और ये भी समझने लगते हैं कि कोई चीज पढ़ने में आसान या मुश्किल क्यों लग रही है। आप ज्यादा जागरूक पाठक बन जाते हैं।
मेरे लिए तो इस चर्चा से सबसे बड़ी सीख शायद यही थी कि व्याकरण को नियमों के डर से निकालकर उसे विचारों को आकार देने वाले एक लॉजिकल सिस्टम की तरह देखना, ये पर्सपेक्टिव नया था। और हाँ, ज्ञान का अभिशाप, ये जानकर हैरानी हुई कि ये चीज कितनी आम है और बुरे लेखन के पीछे कितना बड़ा कारण।
मुझे वो क्लासिक स्टाइल का आइडिया बहुत अच्छा लगा। वो पारदर्शिता, वो पाठक के प्रति सम्मान, ये बातें अपील करती हैं। और ये विचार कि स्पष्टता सिर्फ स्टाइल की बात नहीं बल्कि एक नैतिक कर्तव्य है, ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। ये सिर्फ लिखने के बारे में नहीं, ये सोचने की स्पष्टता के बारे में भी है।
तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। पिंकर का तर्क है कि स्पष्टता विचारों को सीमित नहीं करती बल्कि उन्हें शक्ति देती है। क्या सब इससे सहमत हैं? या लगता है कि कभी कभी थोड़ी जटिलता, थोड़ी अस्पष्टता भी जानबूझकर इस्तेमाल की जा सकती है और वो भी असरदार हो सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।